पद संख्या 21। पुनि चले देखा राज द्वारा, मानुष फिर है पाई नहीं बारा। हस्त सिंघली बाध है बारा, जन सजीव सब ठाण पहारा। कौनो सेत पीत रतनारे, कौनो हरे घूम औकारे। बरन ही बरन गगन जस मेघा, औतिन गगन पीठ जनु ठेघा। सिंघल के बरनो सिंघली, एक एक चाहे एक एक बलि। गिरि पहार वय पय गहि पेलहि, बिरछ उपारि डारि मुख मेलहि। माते ते सब गरजहि बाधे, निसिदिन रहें महाउत कांधे। धरति भार न अंगवे, पाँव धरत उठहालि। कुरुम टूटे मुई फाटे, तिन हस्ती के चाल। प्रसंग। अपने महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप मोडन खंड के प्रस्तुत छंद में जय श्री सिंघलगढ़ के विशाल और शक्तिशाली हाथियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। व्याख्या। पुनः आगे चलकर कवि जायसी ने राजद्वार देखा। सारी पृथ्वी पर घूम आइए, किंतु ऐसा राजद्वार न मिलेगा। उस द्वार पर सिंघली हाथी बधे हुए हैं, जो सभी ऐसे लगते हैं जैसे सजीव पर्वत खड़े हों। कोई उनमें से श्वेत, कोई पीले और लाल, कोई हरे, कोई धूमिल एवं कोई काले रंग के हैं। वे बादलों के समान भांति भांति के रंग वाले हैं। उनकी पीठ आकाश से लगती है। सिंघल के हाथियों का मैं क्या वर्णन करूं? प्रत्येक पर एक महावत सवार है। वे पहाड़ को बाल लांग जाते हैं और वृक्षों को उखाड़ कर अपने मुख में डाल लेते हैं। वे वहां बधे हुए रहते हैं और मतवाले होकर गर्जन करते हैं। उनके ऊपर महावत रात दिन बैठे रहते हैं। पृथ्वी उन हाथियों का भार नहीं झेल पाती है। उन हाथियों के चलने से पृथ्वी हिलने लगती है और उसको धारण करने वाला कछुआ मुंह फाड़ देता है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है। विशेष अलंकार। देखा द्वारा बाधेवारा, सजीव सब कौनो कारे। सिंघल सिंघली पहाड़ पैगही पेलही, मुख मेलही वे अनुप्रास। मानुष फिर ही पाई नहीं पारा में अतिशोक्ति। जन सजीव सब ठाण पहाड़ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बरन ही बरन में सभंग पद यमक, बरन ही बरन गगन जस मेघा में उपमा, तथा एक एक में विप्सा अलंकार है। हाथियों की विशालता और शक्ति का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस तथा कोमल मधुर सरस व्यवहारिक अवधि भाषा है। पद संख्या 22। पुनि बांध रज बार तुरंगा, का बरनो जस उनकै रंगा। लील समंद चाल जम जाने, आंसुल भौंर गियाह बखाने। हरे को रंग महु बहु भांति, गरर कुकाह बुलाह सुपाति। तीख तुखार चांड औ बाके, संचर ही प्यौरी ताज बिनुहाके। मनते अगमन डोल ही बागा, लेत उसास गगन सिर लागा। पौन समान समुद्घर धावही, बूढ़ न पाव पावर हुई आवही। थिर न रहें रिस लोह चबाही, भाजही पूछ शीस उपराही। अस तुखार सब देखे, जस मन के रथवाह। नयन पलक पहुँचा वही, चह पहुँचा कोई चाह। प्रसंग। यह अवतरण हिंदी साहित्य भक्तिकाल की निर्गुण धारा की प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण में कविवर जायसी के राजद्वार के घोड़े का वर्णन किया गया है। व्याख्या। राजद्वार में जो घोड़े बंधे हैं, उनके रंगों का क्या वर्णन किया जावे? कोई नीले रंग का है, कोई बादामी रंग का। इनकी चाल संसार में प्रसिद्ध है। कोई हासुल कुमैत हिनाई है, जो मेहंदी के रंग का होता है और उसके पैर कुछ काले होते हैं। कोई भौर और कोई गियाह है। हरे कुरंग तथा महुए जैसे रंग के अनेक घोड़े हैं। कोई घोड़ा गर्रा है और कोई कोकाह अर्थात सफ़ेद रंग का है। कोई बुल्ला है, जिसकी गर्दन और पूंछ के बाल पीले हैं। तीव्र तुषार देश के घोड़े बड़े ही प्रचंड और अद्भुत हैं। बिना ताज अर्थात घोड़े से हाँके हुए ही वे ड्योढ़ी में प्रवेश कर जाते हैं। बाघ पकड़ने पर भी मन से भी अधिक गति से चलते हैं और सांस लेने में उनका सिर आकाश से लग जाता है। वे वायु के सदृश समुद्र पर दौड़ जाते हैं। उनके पैर डूबते नहीं और वे पार होकर लौट आते हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। वे क्रोध में भरकर लोहे की लगाम को चबाते हैं, सिर के ऊपर वे अपनी पूंछ को फिरा रहे हैं। तुषार देश के घोड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो मन के रथ में जुते हुए घोड़े हों, कोई जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ उसे पलक मारने में पहुँचा देते हैं। विशेष अलंकार बांधे बार जम जाने तीघ तुषार समान समुद्र पाँव पार रहे रिस पहुँचा वहीं पहुँचा में अनुप्रास का वर्णों में काक व क्रोक्ति बिनु हाकों में विनोक्ति मन ते अगमन डोलही बागा में व्यतिरेक पौन समान समुद्र पर धावई में उपमा तथा अस रथवाह में उदाहरण अलंकार है। अस जस में ध्वनि साम्य है। दूसरा घोड़ों का वर्णन नाम परिगणन शैली में किया गया है। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस एवं मधुर सरस कोमल व्यवहारिक अधिभाषा। पद संख्या 23। राजसभा पुने दीख बैठी इंद्र सभा जनु परि गई दीठी धनी राजा असी सभा समारी जान हो फूल रही फुलवारी मुकुट बंध सब बैठे राजा दर निशान नित जेन के बाजा रूपवंत मणि दीप लिलाटा माथे छात बैठे सब पाटा मानहु कमल सरोवर भूलय सभा का रूप देखि मन भूलय पान कपूर मेद कस्तूरी सुगंध बास भरी रही अपूरी माझ ऊंच इंद्रासन साजा गंधर्व सेन बैठ तह राजा छत्र गगन लगि ताकर सूर तवय जसु आपु सभा कमल जिमि बिगिसय माथे बड़ परतापु। प्रसंग यह अवतरण हिंदी साहित्य की भक्तिकाल के निर्गुण धारा की प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत है। कविवर जायसी प्रस्तुत छंद में सिंघल के राजप्रसाद का विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या जायसी कहते हैं कि फिर राजसभा लगी हुई दिखाई पड़ती है, वैसी है मानव इंद्र सभा ही दिखाई दे रही हो। जिस राजा की ऐसी सुसज्जित सभा है वह धन्य है, ऐसा लगता है मानो फुलवारी फूल रही हो। सब राजा इस सभा में मुकुट धारण किए हुए बैठे हैं, उनके द्वार पर नित्य नगाड़े बजते हैं। वे बड़े सुंदर और रूपवान हैं और उनके ललाट पर मणि चमकती है, उनके मस्तक पर छत्र होता है। वे सब पाट अर्थात सिंहासनों पर बैठते थे। सभा में वे सब ऐसे प्रतीत होते थे मानो सरोवर में कमल खिले हुए हों। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस सभा का रूप देखकर मन भ्रमित हो जाता था। पान कपूर मेद कस्तूरी की सुगंध से अपूर्व बास चारों ओर भर रही है। बीच में राज सिंहासन सुसज्जित है जहाँ गंधर्व सेन राजा बैठते हैं। उनका राजछत्र आकाश के बराबर ऊंचा है। वहाँ बैठा हुआ राजा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं तप रहा हो। उसके प्रताप से सभा में बैठे सारे राजा इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाते हैं। उस राजा के मस्तक पर प्रताप दमकता रहता है। विशेष अलंकार सभा समारी फूल फुलवारी बंद बैठे निशान नित कपूर कस्तूरी मनुप्रास इंद्र तथा जनु परि गई डीठी जानहु फूल रही फुलवारी मानहु कमल सरोवर फूले में उत्प्रेक्षा तथा सूर्य तवय जसु आप में उपमा अलंकार है। सामंतों के वर्णन द्वारा गंधर्वसेन का महत्व रेखांकित किया गया है। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस एवं व्यवहारिक अवधि भाषा है। पद संख्या 24। साजा राज मंदिर कबिलासु सोने कर सब धरती अकासु सात खंड धौराहर साजा उह समार सकय अस राजा हीरा ईंट कपूर गिलावा और नग लाई सरग लय लावा जावत सब उरेह उरेहें भांति भांति नग लाग उबेहें भव भटाव सब अनबन भांति चित्र होत का पतहि पाती लाग खम्ब मनि मनिक जरे निशिदिन रहें दीप जनु जरे देखि धौरह उजियारा छपि गए चाँद सूरज अवतारा सुना सात वैकुंठ जस तस साँजय खंड सात बेहर बेहर भाउतस खंड खंड उपरात। प्रसंग या अवतरण हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में जायसी ने राज मंदिर का वैभवशाली वर्णन किया है। राज मंदिर कैलाश के सदृश सजा हुआ है। उसका फर्श और छत सब सोने के हैं। सातवें खंड पर धवलगिरी सजाया गया है। राजा गंधर्व सेन ही ऐसा महल सजा सकता था। हीरे की ईंटें हैं, कपूर का गारा है और रत्न जड़कर उसे स्वर्ग तक पहुंचाया गया है। इतने भी चित्र हैं, सब वहां चित्रित हैं। पच्चीकारी करके भांति भांति के नग लगाए गए हैं। भिन्न भिन्न भांति के अनेक कटाव उसमें बनाए गए हैं और उनमें पंक्ति पंक्ति में चित्र बनते चले गए हैं। उस धवल गृह की चमक को देखकर चंद्रमा, सूर्य तथा तारे छिप गए हैं। भाव यह है कि उसके सम्मुख फीके पड़ गए हैं। जिस प्रकार के सात स्वर्ग सुने गए हैं, उसी प्रकार के उसने राज मंदिर के सातों खंड सजाए थे। प्रत्येक खंड में क्रमशः नई नई सजावट दिखाई पड़ती है। अलंकार सोने सब सात साजा सामरी सके लाई लय लाबा उरेह उरेह पाते ही पाती मनि मनिक जनु जरे सुना सात साजे सात मन प्रास भांति भांति बेहर बेहर खंड खंड में पुनरोक्ति प्रकाश निशिदिन रहे दीप जनु जरे में उत्प्रेक्षा तथा सुने सात सात में उदाहरण अलंकार है। जस तस में ध्वनि साम्य है। राजा के महल का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस एवं सरस सरल कोमल अवधि भाषा है। पद संख्या 25। बरनौ राज मंदिर रनिवासु अछरिन भार जानु कबिलासु सूरह सहस पदुमिन रानी एक एक ते रूप बखानी अति स्वरूप औ अति सुकुवारी पान फूल के रहें अघारी तिन ऊपर चंपावती रानी महा स्वरूप पाट परधानी पाट वैसे रह किए सिंगारू सब रानी ओहि करहें जुहारू नीति नवरंग सुरंगम सोई प्रथम बसन सरबरी कोई सकल दीप मह चुनि चुन आनी तिन मह दीपक बारह बानी कुंवरी बतीसौ लक्षिणी असब माह अनूप जावत सिंगल दीपक सबय बखानय रूप। प्रसंग यह अवतरण हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की नृत्यगुण धारा के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि जायसी ने रनिवास का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहता है कि अब मैं राज मंदिर का वर्णन करता हूँ। वह अप्सराओं से भरा हुआ कैलाश अर्थात स्वर्ग सा लगता है। वहाँ पद्मिनी जाति की 16,000 रानियाँ हैं जिनमें सभी एक से एक अधिक रूपवती कही जाती हैं। वे अति सुंदरी और अति सुकुमारी हैं तथा केवल पान फूल के आधार पर जीवित रहती हैं। उन सबके ऊपर रानी चंपावती महारूप शालिनी और पट्ट महादेवी के पद की अधिकारिणी हैं। वो श्रृंगार से सजी हुई अपने आसन पर विराजती हैं और सब रानियाँ उसे प्रणाम करती हैं। वह नित्य ही सुंदर और नवीन रंग की ज्ञात होती है। अब भी उसकी प्रथम वैसी ही है। उसकी समानता की कोई रानी नहीं है। उस रनिवास की रानियाँ समस्त द्वीपों में से चुन चुन कर लाई गई हैं और उनमें वह 12 वर्ष के सोने की कांति वाली रानी पद्मावती दीपक तुल्य है। वह 32 लक्षणों से युक्त है और सब में अनुपम है। संपूर्ण सिंगल द्वीप में उसके रूप की चर्चा होती रहती है। अलंकार राजा रनिवास 16,000 स्वरूप सुकुमारी पाठ परधाने सुरंगम सोई 12 वाणी अस अनूप में अनुप्रास अचरिन वराजनु कबिलास में प्रेक्षा एक एक वे में विप्सा तथा चुनी चुनी में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। 32 लक्षण बृहद संहिता में स्त्रियों के रूप के 32 लक्षण गिनाए गए हैं। भाव साम नीति नवरंग सुरंगम सोई महाकवि माँ के श्लोकानुसार क्षणे क्षणे जन्वता मुपीति तदेव रूपम रमणीयतायाः।